आज हम सब बाबा ने तो बहुत सारी बातें आज भी हम सबको बताए हैं स्वयं का श्रृंगार करने के लिए। तो स्वयं का श्रृंगार करने के लिए बाबा ने हम सबको बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए हैं। ये छोटी छोटी बातों को जब हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके द्वारा स्वयं को परिवर्तन करना, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन समाया हुआ है और सुपरिवर्तन की शक्ति से विश्व परिवर्तन होने का जो बाबा ने नारा दिया हुआ है, उस नारे को सफल करने के लिए हम सब आत्माएं अपने ही बलबूते से, अपने चिंतन से, मनन से अपने आप को संपूर्ण रूप से बदलने में लगे हुए हैं। तो इसलिए बाबा हम सबको इसके माध्यम से ही दुनिया चेंज होने की बातें करते हैं। इसलिए सो परिवर्तन के लिए अनेक बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम करना पड़ता है और कई सारी चीज़ों से परहेज रखने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को दूर रखने पड़ते हैं। तो स्व परिवर्तन संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का नारा आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं दे सका, वो काम बाबा ने हम सबको दिया हुआ है। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीज हम सब अपना रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज जो है छोटी छोटी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज आगे जाके होने वाला है। तो इसलिए हम हर दिन इस चीज को फोकस तक करते हैं, उसके लिए फिर भी हमें कोई बातें दृढ़ता के साथ जीवन में अपनाना होगा। जब तक हम उस चीज को जीवन में नहीं लाते हैं तो ये कोई जपने के लिए नहीं होता है इस सारी चीजें, और कोई रटने के लिए भी नहीं है। आंतरिक जगत में छिपी हुई आंतरिक शक्ति, अंतर्निहित शक्ति को जागृत करना ही सुपरिवर्तन कहा जाता है। स्वयं का परिवर्तन अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो एनर्जी हमारे अंदर छिपी है, छिपी हुई है, उसको प्रत्यक्ष करना, उसको प्रकट करना, उसको जनमानस तक पहुँचाना और सभी आत्माएं स्वीकार करें कि इसके अंदर, हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति जब जाग जाती है, जागृति आती है, तो कहा भी जाता है कि जिस दिन हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, कहते हैं दुनिया हमें पहचान लेती है। तो बाबा ने इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मा के अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का काम किया है। तो इसमें हमने कुछ चिंतन करके कुछ टॉपिक पॉइंट निकाले थे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए सुपरिवर्तन शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समझना होगा और अपने लक्ष्य को फिक्स करना होगा कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ, मैं क्या बनने चाहता हूँ, मैं अपने को कैसा देखना चाहता हूँ, मैं अपने को कैसा मानना चाहता हूँ और मैं अपने को क्या समझता हूँ और आगे क्या समझना चाहता हूँ, और विश्व रंगमंच पर मेरा क्या रोल है और मेरा इस मति और इस गति के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मेरा आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले गोल को तैयार करना होगा कि जब तक हम गोल तैयार नहीं करते हैं तब तक कितनी भी बड़ी चीज साधना हम कर ले, कुछ भी कर ले, उसका यथार्थ रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, क्योंकि गोल स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है हमारा गोल। तो हमें आगे जाकर के भी उतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमने तय करके रखा ही नहीं। इसीलिए जो कुंवारे भी जो अपना मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, पहला वो तय करता है कि क्या करना है, कैसा बर्तन तैयार करना है, कौन सा कैसा मटका तैयार करना है, कितना बड़ा बनाना है, उस हिसाब से ही वो हर काम करता है। तो छोटे से छोटे छोटी सी छोटी चीज से लेकर के बड़े बड़े जो काम होंगे वो लक्ष्य के आधार से तय होता है दुनिया में। तो इसीलिए लक्ष्य बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्वयं का परिवर्तन और स्वयं के परिवर्तन की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें लक्ष्य तय करना है कि मुझे कैसा बनना है, मैं क्या बनने चाहता हूँ, मैं स्वयं को कैसा देखना चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी के लिए भी कहते हैं कि जब वो चरखा काट रहे होते तो पूरा भारत की आज़ादी की सपना देखते थे। काम तो छोटे कर रहे होते थे लेकिन पूरे भारत कैसे आज़ाद हो जाता। हाँ, तो अपने लक्ष्य के लिए छोटी छोटी काम में भी, इसको कहते हैं दिवा सपना भी कहते हैं। सोने के बाद तो सपना कभी कभी सबको आता भी होगा, किसी को नहीं भी आता है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन ये दिवस सपना है, अपने अंडर में है, अपने कंट्रोल में है, अपना भविष्य तय करता है ये। तो इसीलिए भविष्य तय करने के लिए सबसे पहले हमको गोल तैयार करना है। तो दूसरी बात है कि हमें जिस बाबा ने ट्रैक दिया हुआ है, तो चारों सब्जेक्ट में हम किस तरीके से मास्टर बन सकते हैं, जिसमें बाबा ने बोला कि ज्ञान की गहराई हो, योग की भी गहरी अनुभूति हो, धारणा हमारा कितना मजबूत है और हमसे क्या सेवा हो सकती है, ये चारों सब्जेक्ट में हमारी मजबूती आना चाहिए। तो क्योंकि विश्व परिवर्तन करने के लिए स्वयं के ऊपर मदार है, तो हम जितना शक्तिशाली होंगे इस सारी सब्जेक्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो आगे का जो यात्रा होगा तो सहज होगा हम सबको। तो इसके लिए हमने आगे निकाले थे कि इस बातों के लिए सबसे पहले हमें इस सारी बातों को छोड़ना होगा, जो आलस्य सुस्ती जो अलबेलापन है मन के अंदर, कमी कमजोरी बन करके रहे हुए हैं, टालमटोल करने का जो संस्कार होते हैं, पोस्टपोन करने के जो संस्कार होते हैं, उसके ऊपर में भी हमें फोकस करना होगा कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटे दुश्मन है, लेकिन ये बहुत बड़े परिणाम कर दिखाते हैं और हमें जीवन में आगे कभी बढ़ने नहीं थे। तो इसीलिए इसके ऊपर में भी हमें संपूर्ण फोकस करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हर दिन आगे बढ़ने में बहुत बड़ा विघ्न रूप बनता है। और इसके लिए तो यहाँ पर एक पूरी किताबें हम सब ने पढ़ डाले थे और उसके ऊपर आलस्य अलबेलापन के लिए जो किताबें बने थे उसके ऊपर हम सब ने काफ़ी स्टडी की है। सिर्फ स्टडी करने के लिए ही काफ़ी नहीं होना चाहिए, तो उतना ज़्यादा अटेंशन, उतनी ज़्यादा चेकिंग भी चाहिए, क्योंकि मन तो हर दिन अच्छा और सहज चाहता है, कोई खास रिस्क उठाने का भी मन चाहता ही नहीं। तो मन के ऊपर हमारा कंट्रोल हो और हम जो चाहे सो कर सके, इसके लिए हमें सबसे पहले इस बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो उसके बाद में हमने निकाले थे कि जैसे कि दृढ़ संकल्प शक्ति हमारे अंदर जितना होगा उतने हम आगे हर चीज कर पाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, इसको विषम प्रतिज्ञा भी कहा जाता है, क्योंकि करके दिखाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, मर मिटने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होते हैं तब तक ये चीजें हमारे जीवन में नहीं आता है। तो कोई भाई सुना रहे थे कि दादी जानकी जी की बातें सुना रहे थे, कोई भी कमी कमजोरी उनके जीवन में दिखती थी, समझ में आता था, तो उसको 6 महीने तक पीछे करके जब तक उसको खत्म नहीं करती तब तक दादी उसके लिए पीछे नहीं हटती, उसको संपूर्ण परिवर्तन करके तब आगे बढ़ती थी। तो हमारे पास में भी हम सबको पता होता है कि कमी कमजोरी है हमारे पास में, लेकिन हम हर दिन उससे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो हमारे ऊपर कुछ न कुछ कमी कमजोरी ला के थोप देता है, फिर भी हमें इतनी दृढ़ता शक्ति है कि आधार से उसको हटाऊं, निकालूं, उसके ऊपर विजयी बनूं। और कितना समय लगेगा, कब तक होगा और किस आधार से उसको खत्म करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम सबको उतना ज्यादा ज्ञान है या नहीं भी है, क्योंकि हल्के रूप से थोड़ी देर के लिए तो हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन वो बार बार पीट करता रहता है। उसके लिए हमें उसको जड़ से ही खत्म करना होगा। जब तक हम उसको जड़ से खत्म नहीं करते हैं, तब तक वो आने का क्रम उसका जारी रहता है। और किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी संकल्प के रूप से उसकी आने का क्रम जारी रहता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी ज्यादा जागृति न होने के कारण से वो चीजें, जैसे कि हमारा जैसे मेहमान बन के घूम रहा होता है, तो उसके ऊपर हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प चाहिए कि इसके ऊपर हमें कुछ करके दिखानी होगी। तो उसके बाद में हमने निकाले थे कि स्मृति स्वरूप अर्थात जागृति की अवस्था भी ये स्वरूप परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम जागती ज्योत नहीं होते, अखंड स्मृति स्वरूप नहीं होते हैं, क्योंकि 63 जन्म की जो संस्कार है कि हमारे रग रग में समाया हुआ है, वो नस नस में समाई हुई है, और उसके द्वारा जो वाइब्रेशन बनकर के जो वातावरण वायुमंडल में फैला हुआ है, तो उसके साथ में उसका कनेक्शन है। तो हमने किसी न किसी रूप से कभी न कभी किसी न किसी वक्त वातावरण वायुमंडल को तुच्छ बनाने के लिए, दूषित बनाने के लिए काम किए हुए हैं। तो वो भी हम सबको बीच बीच में, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, तो वो भी हमारे ऊपर बीच बीच में अटैक करता रहता है। इसीलिए अखंड ज्योति जगाते हैं, कहीं पूजा होती है, कहीं पुराण लगाते हैं, कहीं कुछ होता है, ये सब हमारे यादगार है। तो हम जितना ज्यादा स्मृति स्वरूप होते हैं, उतने ज्यादा इस चीज के ऊपर हम विजयी बन सकते हैं। तो अंधेरे को हटाने के लिए, अनजानता को खत्म करने के लिए, और चिंतन को बढ़ाने के लिए, और चिंतन जितनी गहरी होती है उतने हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो इसीलिए स्मृति स्वरूप अर्थात जागती ज्योत होकर के रहते, जागृति की अवस्था में रहते, चेतन अवस्था में रहते हैं, तभी और सारे ऐसी कोई घटनाएं घटित नहीं होते हैं जो हमें इस प्रकार के जघन्य अपराध की ओर ले जाए। इसीलिए जागती ज्योत होना भी जरूरी है। इसलिए हमें आगे भी ये पॉइंट निकाले थे कि हम कितनी ज्यादा अपने को मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन करना भी है, उसके बाद में श्रेष्ठ चिंतन, समर्थ चिंतन, पॉजिटिव चिंतन कहाँ तक हम कर सकते हैं। चिंतन के आधार हमारे पास में तो बहुत सारे दिए हुए। कभी हमारे बाबा ने तो बोला है कि सो चिंतन करो, कभी प्रभु चिंतन करो, स्वयं की आत्मा चिंतन करो। ये सभी चिंतन मन को सदाई बिजी रखने के लिए होता है। अगर ऐसे भी मन को फ्री छोड़ दिया जाए तो 25 से लेकर के 30-35 हजार विचार तो सबके मन में हर दिन चलते ही है, लेकिन वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आए ऐसे ही चलते रहते, लेकिन हमारे अंडर में विचार चले, हम चलाए उस विचारों को, मन हमको न चलाए और हम मन को चलाए, सबसे बड़ी पुरुषार्थ तो हमारा यहीं पर होता है, इसी कारण से और इसी बातों के लिए होता है। इसीलिए मन को चलाने की शक्ति बाबा ने दिया हुआ है। फिर भी इस सारी बातों को जानते हुए, मानते हुए भी सारे दिन भर में कई बार ऐसी बातें आते हैं कि मन हमें चलाए रहा होता है, कब उसने अटैक किया और कब हम जैसे कि उस चीज से हट गए, उस ट्रैक से निकल गए, पता ही नहीं चलता है। इसलिए उसकी निरंतर, उसकी भी जैसे कि वो भी एक अंधकार है, तो जहां पर अंधकार आता है, अंधकार रहता है, तो मन कहीं न कहीं ट्रैक छोड़ ही देता है। तो तो थोड़ी देर में देखते हैं तो मन किसी और तरफ पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए इस मन को सदाई गाइड करने की टेक्निक बाबा ने हम सबको दिया है। तो इस फॉर्मूले को जिसने भी अपनाए हैं, संसार में बहुत टॉप लोग हुए हैं और उनकी हिस्ट्री में नाम यादगार बन गया है। और जिन्होंने इस फॉर्मूले को नहीं अपनाए हैं तो कभी थोड़ा कभी ज्यादा कुछ करते रहे तो ये अधमरु रह जाते हैं। तो इसीलिए निरंतर याद की यात्रा के लिए, निरंतर स्व परिवर्तन के लिए, स्व की शक्ति को जगाने के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आगे हमने निकाले थे कि विघ्न विनाशक बनना और निर्विघ्न जीवन बनाना। विघ्न भी संकल्प के द्वारा ही आते हैं, विघ्नों का आधार भी संकल्प ही है। जो उल्टे पाल्टे जो संकल्प है, संस्कार में जो छिपे हुए हैं, डिप्रूटेड संस्कार है जो अंदर से अपना काम करता रहता है। तो इसीलिए यही है सबसे बड़ी चीज कि बातों को बातों से ही काटे जाते हैं, चिंतन से ही व्यर्थ को खत्म किए जाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं फला लोहा लोहा को काटता है। तो इसी रीति से बातों को काटना ये सबसे बड़ी हाई टेक्निक है बाबा ने। इसीलिए जितने अंदर से जो संकल्प चलते हैं, संकल्प बाहर आकर के बोल में कन्वर्ट होते हैं, बातें बनती है। संकल्प ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। तो इसीलिए हम यह भी चेक कर सकते हैं कि संकल्प क्या चलते हैं, कैसे चलते हैं, किस आधार से चलते हैं। अंदर के जैसे कि कभी जाने पहचाने वाले संकल्प भी मन के अंदर से निकलते रहते हैं और बाहर के देखी हुई बातें भी अंतर जगत में जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए एक दूसरों के साथ इसका कनेक्शन है। इसीलिए हम इस बात को समझे कि अंदर से आने वाले विचार क्या है और बाहर से जाने वाले विचार, तो बीच में हम जैसे कि खड़े होकर के चेक कर सके। तो बाबा ने हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, दिव्य नेत्र का वरदान दिया हुआ है। तो उसके आधार से ही हम अंतर जगत की हलचल को भी समझ सकते हैं। तो बाहरी जगत की हलचल की बातें भी अंदर जाने न देने के लिए हम उसको बीच में रोक सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात के ऊपर भी पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि जब हम इतने बड़े लक्ष्य और इतने बड़े उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इस सब बातें हमारे जीवन के लिए रोड़ा न बन जाए। परिवर्तन में यह है ना, अपना जलवा देखा न सके, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से फोकस करने की भी जरूरत है। क्योंकि इसके लिए आगे हमें त्याग तपस्या साधना की आवश्यकता है। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते। कई सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है तभी तपस्या होती है। फिर तपस्या जब होती है तो साधने की बातें आती है, मन को साधना पड़ता है, बुद्धि को लगानी पड़ती है, ठहराना पड़ता है, जबरदस्ती रोकना पड़ता है उसको। क्योंकि मन की जो आदत है वो मन की आदतों के लिए, जब तक तप का मतलब होता है तपाना, उस चीज में, उस संकल्प में, उस स्वरूप में टिकाना, तो स्वरूप में टिकने नहीं चाहते मन बुद्धि भी कभी। तो उसके लिए जब तक उस चीज से रस नहीं मिलती है तब तक मन बुद्धि वहां ठहर ही नहीं सकता है और ठहराया ही नहीं जा सकता है मन बुद्धि को। और जिस चीज से जब वहीं से रस मिलना शुरू हो जाए तो मन बुद्धि कहीं जाएंगे नहीं। तो इसीलिए हल्के रूप से उसको उस स्वाद में, उस टेस्ट में पहुंचाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब उस चीज में एक बार रस मिल गया, उसका रसपान उसने कर लिया, अमृतपान उसने कर लिया, तो उसकी अंदर से मिलने वाली जो रस है उस रस ही मन बुद्धि को भटकने से बचाया जा सकता है। मन बुद्धि भटकने से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए उस चीज की गहराई हमारे पास होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ये बातें हमारे जीवन में तभी आती है जब हम लंबा समय इसके ऊपर देते हैं। हल्का फुल्का आधा घंटा पौने घंटा सुबह शाम का योग से इस प्रकार के रसपान अमृत पान करना रस स्वादन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए बाबा तो शुरू से 8 घंटा बोलते हैं, तो कभी कभी तो है ना आधा घंटा पौना घंटा भी नहीं होता है। तो पौना घंटा 1 घंटे के योग से ऐसे कोई लाइफ में चेंजेस नहीं आती है, वो तो टेम्परेरी है। और तो कृत्रिम जैसे कि ऑक्सीजन देकर के बचे रहने का एक जैसे कि मामला है वो, और हमारे अंदर से हम उस शक्ति को जगा करके हम अपने टांग पर खड़े हो जाए और बाबा जिस रूप से जैसा देखना चाहते हैं उस रूप से हम तभी पहुंच पाते हैं जब बाबा कहते हैं कि कम से कम बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा हम योग करते हैं, और इसके द्वारा ही आगे के सफर तय होता है। हाँ, बैठ करके होता है 4-5 घंटा। वो तो है, लेकिन कभी कभी आधा घंटा भी नहीं होता है संदली में बैठ करके भी। तो इसीलिए हमें वहां तक पहुंच करके इसको देखना होगा कि मैं किस रूप से अपने आप को इस बात में डाल रहा हूं। तो उसके बाद में सो अध्याय स्वयं हम कितना पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड हैं, कितना हम ध्यान देते हैं। तो सो अध्ययन जब हम करने लगते हैं, सो अध्याय लिखा गया है, सो अध्याय, तो उसमें जब हम इस चीज में पढ़ते हैं लिखते हैं और इसके द्वारा जो चीजें मन में आती है बुद्धि में आती है और उसको चिंतन करके देखते हैं, तभी वो चीज अपना बनता है। उस चीज को थमाने के लिए, रोकने के लिए, अंदर में उसको रिजर्व करने के लिए और को अंदर में उसको जैसे कि ठहराने के लिए, जब तक हम गहरी रूप से चिंतन नहीं करते तब तक वो चीजें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ना लिखना, जैसे कि हमारे डॉक्टर सचिन भाई तो सदा ही उनका यह संस्कार ही है, तो हर दिन सुनते सुनते हम सबको भी आदत धीरे धीरे पढ़ना पढ़ते ही जा रहा है। न चाहते हुए भी हम अभी उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान खींच रहे हैं। तो आगे जा करके जिस बातों के लिए बाबा कहते हैं, दुनिया की सारी स्टडी न भी हो सके, अपने लिटरेचर जितने भी बाबा के घर में हैं और जिनको हम सबको पढ़ने की जरूरत है उसके ऊपर में भी हम पढ़ते रहे, तो और सारी चीजें हम कुछ न भी कर सके, कुछ न कुछ बातें मन में टपकती रहती है बुद्धि में, तो उसके द्वारा भी हमको जरूरत पड़ने पर नॉलेज काम आ जाए, तो यह हम कर सकते हैं। तो आगे हमने निकाले थे तो डायरी रखना, और डायरी में हर दिन का कोई ना कोई चीजें लिखे, कोई ना कोई बातें उसमें लिखे, संकल्प की बातें, अच्छे पॉइंट, अच्छे विचार जब मन में आते हैं उसको भी जब लिखते हैं, तो वो जैसे कि विचार में तो ऐसा बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी सी जैसे बारिश के टाइम में बारिश जम के हो जाता है, लेकिन उसमें डैम बनाए होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, तो पानी को ठहराया जा सकता है। अगर ऐसे ओपन छोड़ दिया जाए तो पानी सिर्फ सीधे जाकर के सागर में चला जाता है। तो जरूरत के समय, आवश्यकता के समय वो चीजें रिटर्न लाए नहीं जा सकता है, इसीलिए तो उसको स्थिर रखने के लिए लिखने की आदत। तो फिर चार्ट लिखना और उसको चेकिंग करना, समीक्षा करना, कितनी हुई, कहाँ तक हुई, कहाँ तक मैंने कर पाए हैं, सारे दिन भर मैंने अपनी प्रगति का जो लक्ष्य रखा था कितने मैंने कर सके, मैं कर पाया हूँ, अब आगे क्या करना चाहिए, तो इतना हुआ है तो इतने से हम संतुष्ट न हो करके आगे के लिए भी सदा जिज्ञासा बनी रहे, एक संस्कार ही बन जाए। तो ये बाबा ने हम सबको चार्ट चेकिंग से लेकर के जो हर दिन 2-4 दिन छोड़ के जो पोता मिल की बातें आती है, तो ये हर दिन के लिए बाबा अपने बच्चों को अलर्ट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, नवीनता लाने के लिए कहते रहते। तो उसके बाद आगे हमने निकाले थे अपनी कमी को भरना है, कमजोरी को निकालना है, और स्वभाव संस्कार के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देना है हमको, क्योंकि ये सारी चीजें हम सबको बहुत कुछ डिस्टर्ब डालते हैं, और संस्कार माने एक बहुत बड़ी मोटी चीज होती है, तो उसके अंदर अनेक सारे फैकल्टी छिपे हुए होते, छोटे छोटे चीजें जहाँ किसी न किसी रूप से कभी वातावरण के फेरे में वो चीजें निकलती, कभी वायुमंडल, कभी संकल्प, कभी सोपन में वो सारी चीजें हमारे ऊपर इंटरफेयर करते हैं। तो इसके ऊपर में भी हमारी नज़र होनी चाहिए। जब तक हमें कमी को पहचानते नहीं और कमजोरी को हम नहीं पहचानते, तब तक निकाला भी नहीं जा सकता है कोई भी चीज़ों को। और जो हमारे अंदर है हमको पता चल जाए, तभी हम निकालने के लिए उसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं। हमको पता ही नहीं वो चीज़ें आ रहा है जा रहा है, हमको दुखी कर भी रहा है, हम साधारण जीवन जी रहे हैं, साधारण चाल में चल रहे हैं, तो उससे लाइफ में चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए आगे के लिए हमको इसके ऊपर में भी संपूर्ण फोकस देना होगा। तो आगे के लिए हमने निकाले थे कि कुछ नया कर गुजरने का लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन कुछ नया करूं, सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ नया सोच को बदलना होगा, दृष्टिकोण को बदलना होगा, भाव को बदलना होगा, भावना को बदलना होगा, वृत्ति को बदलना होगा, दृष्टि को बदलना होगा। अचानक सोच लेने का, अभी हम साधारण रूप से चल रहे हैं संगठन में, मैं यहाँ क्या नया सोच सकता हूँ, नया क्या ला सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे पास में है, लेकिन साधारणता के चपेट में हम तो ऐसा सोच आने भी नहीं देता है कि अभी मैं कुछ करूं इसके लिए। तो इसके ऊपर में भी हमको एक लक्ष्य रखना चाहिए। अभी का अभी मैं 2 सेकंड में क्या कर सकता हूं, आध्यात्मिक दृष्टि का अभ्यास कर सकता हूं, शुभ भावना दे सकता हूं, शुभ कामना दे सकता हूं, वृत्ति को पावरफुल बना सकता हूं। तो इस तरीके से लक्ष्य, तो ये कोई छोटे लक्ष्य है, कोई मोटे लक्ष्य भी रख सकते हैं। तो इसके बाद में जो भी बातें होती है उस बातों से सबक सीखना है हम सबको, सीखने का लक्ष्य हो, पॉजिटिव उठाने का लक्ष्य हो, और इससे मुझे कुछ करना है। तो सबक सीखे बिना कुछ भी चीजें आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सबको सिखा रहा होता है लेकिन हम सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारी चेतना वहां तक पहुंची नहीं होती, हमारा नजर वहां तक पहुंचा ही नहीं होता है कि इससे भी सीखना होता है, इससे भी जानना होता है, इसको भी समझना होता है। ये भी मेरे लिए अच्छी चीज है तो मेरे लिए खराब चीज भी है। अच्छा चीज है समझ में आ जाए, खराब चीज है समझ में आ जाए, तभी बुराइयों को हटा करके अच्छाइयों को लाया जा सकता है। तो समझ में नहीं आती, साधारणता इतनी ज्यादा हावी हो जाता है कि कौन से अच्छा, कौन से बुरा, कौन से घटिया, कौन से जैसे कि हमको दुख देने वाला, ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए। तो नॉलेज अर्थात जागृति यही कहता है कि पहले समझो। जब तक उस समझ में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर हम विजयी नहीं बन सकते। तो उसके ऊपर फिर हमने निकाले थे जो बाबा ने बोला कि सुदर्शन चक्रधारी बोलते हैं, त्रिकालदर्शी बोलते हैं, त्रिनेत्री बोलते हैं। ये सभी चीजें बहुत मोटी चीज है, तो इसमें हम सबको बीच बीच में इस स्वरूप में भी स्थित होना है, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारे व्यर्थ को खत्म करते हैं, नेगेटिव को खत्म करते हैं, साधारणता को खत्म करता है, ये सारी चीजों की स्मृति आते ही। लेकिन कभी कभी इतनी गहराई में जाके इस चीज को अनुभव करना चाहिए कि जब जरूरत पड़ते ही उस चीज में टिकने से हमको उसका फायदा मिले। तो इसके लिए हमने एक बार सुदर्शन चक्र चलाना शुरू किए थे, तो हमको 3 घंटा लगा उसको तो हमने सतयुग से शुरू किए थे कलयुग तक, तो संगम तक आए, एक एक जन्म में जाकर के देखा था। तो एक एक जन्म को देखा हमने। तो लास्ट में ऐसी स्थिति बन गई है, शरीर से स्मेल आना शुरू हो गया, गंध मारना शुरू कर दिया इस बॉडी ने। तो वहां की सब चीजों की अनुभूति किए थे। तो आज कभी भी जरूरत पड़ती है उस स्वरूप पे सीधा जाके टिक जाते हैं, तो फिर इधर उधर जाने का चांस ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सभी चीजों की गहराई के लिए सबसे ज्यादा टाइम निकाल के बहुत खुशी से, जैसे आजकल नेट के लिए बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो 2 घंटा भी निकल जाता है, समय पता ही नहीं चलता है तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं, उससे 1000 गुना चीज हमारे अंदर छिपा है वो पता ही नहीं हम सबको। और उसकी दुनिया में अगर हम डूब जाए तो व्यर्थ बातें, जो फालतू बातें जो हमारे समय चुरा रहा है और हमें अधोगति की ओर ले जा रहा है, दुर्गति की ओर ले जा रहा है, तो सारी चीजों से हम स्वतः बच सकते। ये सब सारी चीजें तो ब्राह्मणों के लिए दुश्मन है अभी, और इससे परहेज न हो तो आगे जा करके ऐसे बहुत सारी संशय अभी इस दुनिया में शुरू हो चुकी है, और वो इस तरीके से मन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रही है। तो इसीलिए हम सबको इसके ऊपर हमें भी तो आगे फिर हमें जो अपनी विशेषताओं को जानना, बाबा ने जो सर्व गुणों के बारे में बोला है, सर्व शक्तियों के बारे में बोला है, एक ही गुणों के स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। एक गुण के पीछे एक दिन रात को भट्टी यहाँ चली थी, तो एक उस भट्टी में एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया था, 3 घंटा से भी ज्यादा समय निकल गया होगा एक चीज के ऊपर में, और जितना गया उतना आनंद आना शुरू हो गया। रात कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो एक चीज के ऊपर इतनी गहराई में जा सकते, एक किताबें बन सकता था अगर लिखा जाता होता तो, पूरे उसके एक्सपेरिमेंट हो गई थी और प्रूफ करके प्रूफ है। जैसे सर्व गुणों के लिए जो 36 प्रकार के जो बाबा ने गुण बताए और भी बहुत सारे हैं, तो उसकी गहराई कितनी होगी, तभी हमें अथॉरिटी से कह सकते हैं कि मेरे पास में इस गुण की कमी नहीं है, और इस बातों के लिए कोई भी परिस्थिति और समस्या किसी भी रूप से आ जाए मैं चौकस हूं, मैं चौकन्न हूं, और इसके ऊपर मैं अथॉरिटी से बात कह सकता हूं और कर सकता हूं। इतना हिम्मत ब्राह्मण के दिल से निकले, जब किया होता है तभी निकलता है किया ही नहीं होगा तो इस सब बातों के ऊपर हम सुने होते हुए थोड़ा सा चुप रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। तो उसके बाद में आसार संसार है ये, तो बुद्धि में इतनी गहरी वैराग्य अंदर समा जाए कि कोई कैसे भी रूप से दुनिया में हमें आकर्षण करने वाली चीजें आ जाए लेकिन हमें प्रभावित न करे, हम बेहद के वैरागी वृत्ति अपनाए और बेहद के वैरागी बन करके रहे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाहरी चीजों का आकर्षण न हो और हमारी स्थिति और अवस्था में आंच न आए, इसके ऊपर संपूर्ण अथॉरिटी से हम कह सके। तो आसार संसार है, दुनिया में कहने में तो बहुत आता है, उस समय उस दिन भी शमशानी वैराग्य के बारे में बातें तो बहुत हुई थी, तो उसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स निकाले गए थे। जैसे कि किसी को टॉपिक मिलता है तो हम भी अपने टॉपिक समझ करके थोड़ा सा उसको घुमाने की थोड़ा सा मेहनत करते हैं, कभी कभी बुद्धि में बैठ जाता है तो अच्छे अच्छे उसमें पॉइंट निकलते हैं। तो शमशानी वैराग्य के साथ साथ में सदाकाल का जो वैराग्य मन में बैठ जाए, तभी हम इस सब चीजों से आकर्षण मूर्त बनेंगे और आकर्षण से मुक्त बनेंगे। तो इसीलिए हम सबको इसके ऊपर में भी संपूर्ण ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता है। और आगे निकाले थे पुरुषार्थ हीन करने वाली बातें, लक्ष्य हीन करने वाली बातें, उद्देश्य को हीन बनाने वाली बातें, और बहुत सारी चीज दिल शिकस्त करने वाली बातें से हमें थोड़ा दूर रहना है। कई सारी बातें तो बाहरी जगत में व्यापक है, उसमें हम जाने अनजान में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो हमारी स्थिति को गिरा देते हैं हम खुद ही जानबूझ करके। स्थिति को गिराना माना सबसे बड़ा आत्मघात है, और बहुत ज्यादा पश्चाताप होती है उससे, और आत्मशक्तिहीन हो जाती है, ऊर्जाहीन हो जाती है, और कई दिन हमारा चौपट हो जाता है, और हम उस चीज से निकलने के लिए बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ता है, और किया होगा तो अपना सकते, नहीं तो फिर ऐसे हल्के में चलते रहते हैं, कब जाकर के पिकअप होता है पता ही भी नहीं चलता है। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर में भी हमको फोकस करना है। और आगे निकाले थे यज्ञ में बाबा ने जो भी नियम दिए, मर्यादा दिए, श्रीमत दिए, इस सभी चीजों को अपना करके ही ये सारी चीजें पाई जाती। इस सारी चीजों के ऊपर में अगर हमारा फोकस नहीं है, ट्रैक है हमारे ठीक नहीं है, तो हम चलने वाले भी उसी हिसाब से चलेंगे। रोड अच्छा होगा, मर्यादा जो नियम बने हैं वो हमारी सेफ्टी का साधन है, सब पल पल हमारी रक्षा करते हैं सब, लेकिन हमने उसको है ना बजे के किनारा कर दिया है, तो आगे जितना भी जाएंगे कभी न कभी रिवर्स गियर लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं खालीपन आएगा, कहीं ना कहीं लाख को ब्रेक किया ना कहीं ना कहीं उलझन आएगी, कंफ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं अंदर से दुख आने लगेगा, तो उस समय चेकिंग कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैंने लाख को ब्रेक किया है, तब ये सब बातें मन के अंदर आ रही है और उस सारी चीजें हमें दुखी कर रहा है। तो इसके ऊपर हमें भी संपूर्ण ज्यादा नजर डालने की आवश्यकता है। तो उसके आगे हमने निकाले थे कि मन बुद्धि को, बुद्धि की हर चीज बुद्धि के बल से देखना होगा। आज हम मन से हर चीज देख लेते हैं वो साधारणता है, लेकिन बुद्धि के आधार से अगर देखते हैं तो हम सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। जब तक हम साइंटिस्ट नहीं बनते हर चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए, समझने के लिए, तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, अब किसी ने कुछ बोल दिया हमने उस चीज को मान लिया, किस आधार से माना हमने, वो परंपरा बनी हुई है। तो उसको गहराई में जाके जब तक हम नहीं समझे और जब तक उस चीज को स्वीकार न करे, उस चीज को प्रूफ और तथ्य तक और सत्य बातों तक न पहुंचे, उस चीज को स्वीकारना नहीं है। बुद्धि के अंदर अनंत शक्ति छिपी है, जो जजमेंट पावर के लिए काम करता है। बुद्धि परखने की शक्ति उसमें छिपी है। तो बुद्धि जब स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है, पारस होती है, अलौकिक बन जाती है, तो हर चीज को काटना छाटना और किस चीज को निकालना, किस चीज को रखना, बुद्धि के अंदर सारी बातें आ जाती है। लेकिन बुद्धि को इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं आज। तो इसीलिए हर चीज भूल जाता है, हमारे साथ में ही है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम भी अभी, और जब तक उस तथ्य और सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक नहीं छोड़ते, भले 5 घंटा लगे 4 घंटा लगे छोड़ते नहीं। तो अभी बहुत मजा आता है इसमें। तो बहुत मजा मिलता है और बहुत अनुभव होती है इसमें। तो बैठते हैं, मान करके बैठते हैं, ठान करके बैठते हैं, इसको वार का पार करके छोड़ना है। तो इसके आधार से हमको इस सारी चीजें होती है। तो उसके बाद में बाबा ने बोला है कि जो हमारे कई सारे स्वरूप है, जैसे बीज रूप स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, अव्यक्त स्थिति है, विदेही है, निराकारी स्टेज है, इस और कल्प वृक्ष के नीचे जो है कि सृष्टि चक्र का नॉलेज, बहुत सारे बाबा ने बातें स्वरूप बताए हैं। उस एक एक चीज की गहराई हमारे पास होनी चाहिए, जैसे फरिश्ता स्थिति क्या है, बीज रूप स्थिति क्या है, अंतर्भाग शरीर का क्या अनुभव है। तो इसकी हर चीज की गहराई हमारे पास में जब होगा तब हम ब्राह्मण कहने के हकदार है। अनुभव ही नहीं है तो ब्राह्मण कहकर के कलर टाइट करने का हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। जब हम इस चीज की गहराई पाएंगे, गहराई तक पहुंचेंगे और हम उस स्वरूप में टिकेंगे, कंबाइंड होकर के अनुभव करेंगे बाबा को, कहीं घंटा तक कर सकते हैं। तो इस चीज का जब तक हमारे पास में इसका अनुभव नहीं होगा तब तक इस बातों को हम कह भी नहीं सकते। लास्ट में निकाले थे कि एकाग्रता की जो शक्ति हम अपनाने चाहते हैं उसके लिए सोमान का अभ्यास भी कर सकते हैं, आत्मिक दृष्टि का भी अभ्यास कर सकते हैं, तो जो बाबा ने वरदान दिए हुए हैं उसका भी अनुभव कर सकते हैं। जो मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो मन बुद्धि को जो मसला की जरूरत पड़ती है तो उस चीज को हम कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं, तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। दुनिया से लेकर के किसी भी क्षेत्र इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे यहाँ भी मन बुद्धि का जो खेल है एकाग्रता के ऊपर टिकी हुई है। तो एकाग्र तभी हो सकते हैं जब हम नॉलेज को जानते हैं, मानते हैं और मन बुद्धि के बीच में नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो ईंट के बीच में मसला डाल करके उसको जोड़ते हैं, इसी रीति से मन बुद्धि को जब जोड़ना है तो ज्ञान को इस्तेमाल करना, तभी उसको हम अपक रूप दे सकते हैं, मूर्त रूप दे सकते हैं और उसका आनंद आप ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे और भी चिंतन हो सकते हैं, इतना चिंतन करके हमने निकाले थे। तो इतने में ओम शांति।
Anyway.